نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 172 سے 176 تک. آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. پچھلے سبق کے آخر سے ہی کچھ کھانے پینے کی بات شروع ہو چکی اور وہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مشرکین مکہ نے جانوروں کا گوشت کھانے کے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ تبدیلیاں کر رکھی تھیں. کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے جو کہ اصل میں حرام تھیں, کچھ کو حرام قرار دے دیتے جو اصل میں حلال تھیں, اور ان دونوں کاموں کے کرنے کے دوران بات اللہ پہ لگا دیتے تھے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے آج کا کوئی دین کی بات کہنے والا کوئی بات کسی انسان کے فتوے یا کسی اور کی روشنی میں دے اور لوگوں کو یہ احساس ہو یا دلایا جائے کہ یہ بات قرآن یا حدیث میں ہے. کرتے کیوں تھے؟ بتوں کے نام پہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے, جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے. یعنی جس جانور کو اپنے کسی بت کے استھان یا جس کو اب درگاہ کہہ لیں وہاں پہ چھوڑتے, ان کا خیال کیا تھا کہ ان کو ذبح کرنا بھی حرام ہے, ان کی سواری بھی حرام ہے اور اسی طرح سے. اور یہ روایتاً یہ بات ان کے نام پہ چلتی آ رہی تھی. مثلاً سانڈ ہوتا تھا, اس کو چھوڑ دیتے, کسی کا کان چیر دیتے, کبھی کہتے یہ فلاں دیوی کی خوشی کے لیے. ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا کلچر میں, بھینٹ چڑھانا. بھینٹ چڑھانے کی والی بات ہے یہ کہ کہتے تھے ہم نے یہ اس کے بھینٹ چڑھا دیے ہیں, بس اب اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اب ہوا کیا کہ اسی معاشرے میں اسلام آیا جہاں پہ پہلے جہالت تھی. ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہلایا. صحابہ کرام سب کے سب پہلے مشرک گھروں سے تعلق رکھتے تھے. کچھ نہ کچھ اثرات پچھلی زندگیوں کے ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی رنگ پہ نظر آ رہے تھے. اور یاد رکھیے, ایک جملہ شعور سے بولوں گی, آپ شعور سے لکھیے گا, کہ عبادات کرنی بہت آسان ہوتی ہیں. آپ کو کوئی پانچ کی بجائے 10 نمازیں بھی کہہ دے آپ دن میں شوق سے پڑھ لیں گے. سال کے 30 روزوں کی بجائے اگر آپ کو 50 روزے بھی کہہ دیے جائیں آپ شوق سے رکھ لیں گے. عبادات آسانی سے ہو جاتی ہیں, لیکن باپ دادا کی روایات کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ وہ بت ہیں جن کی بنیادیں دل کی زمین پہ پڑی ہوتی ہیں. جب اسلام آئے گا یہ تبدیلی لازم آئے گی, کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ اللہ سے پیار ہوتا ہے. تو اللہ کا پیار ان کو پھر اس بات پہ مائل کرتا ہے کہ باپ دادا, خاندان, رسم و رواج, ان سب چیزوں کو ایک ایک کر کے چھوڑتا جائے یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. لہٰذا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی باتیں کر کے دوبارہ خطاب کیا. پیچھے آیت شروع ہوئی تھی یا ایھا الناس سے, آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 172 ہمیں کیا کہتی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پہلے تو اس لفظ پہ غور کر لیجئے کہ پیچھے یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو خطاب کیا, اور یہاں سے آج آپ دیکھیں گے کہ ہم کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں. کھانے پینے کا بندے کی شخصیت پہ بھی اثر ہوتا ہے, کھانے پینے کا بندے کی عبادات پہ بھی اثر ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایٹنگ ہیبٹس کیا اثر انداز ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں, آپ کے گھروں میں 3-4 بچے بھی ہوں گے, ہر ایک اپنے ہسبینڈ کی عادت کو جانتا ہے. جو لوگ ہیوی میل کھاتے ہیں ان کا مزاج گرم ہوتا ہے, جو بیف زیادہ کھاتے ہیں, اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں, کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے نا. کچھ لوگ فریش میٹ کھاتے ہیں, سی فوڈ کھاتے ہیں, ان کے مزاج میں دھیما پن ہوتا ہے, ان کے چلنے میں, ان کے بات کرنے میں, ان کے معاملے میں نرمی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. آپ اپنے بچے کو جو آپ کے سامنے بالکل آرام سے بیٹھا ہوا ہے آپ سے ضد کرتا ہے کہ مجھے کوک چاہیے, آپ اس کو کوک دیتے ہیں, پی لیتا ہے. تھوڑی دیر بعد وہ ضد کرتا ہے مجھے آئس کریم چاہیے, آپ آئس کریم بھی دے دیتے ہیں. آپ کو پتا کہ تیسری جب بعد دفعہ اس نے چاکلیٹ مانگنی اور آپ دیں گے نا, تو وہ پھر ذرا ذرا سی بات پہ نا یوں پاؤں مارے گا, پھر غصے میں آئے گا، پھر زمین پہ مچلے گا. ہوا کیا، پہلے آپ نے کوک کے کین کے اندر اس کو چینی کی بوری پلا دی، پھر آپ نے آئس کریم کے کپ میں اس کو کئی چمچ چینی کھلا دیے، اور اب چاکلیٹ کھا کے وہ ہائپر ہو گیا. یہ جو آج کی بچے ہائپر دکھتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے. ہم کھجور نہیں دیتے بچے کو، حالانکہ وہ بھی کالی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں کالا چاکلیٹ دیتے ہیں، بچہ کھا لیتا ہے. سیدھا صاف ستھرا پانی یا سفید چمکتا ہوا دودھ کوئی بچہ نہیں پکڑے گا، لیکن کالے رنگ کی کوک جس میں سے دھواں بھی نکل رہا ہے وہ بھی لیں گے. فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے، گاڑی میں جو پیٹرول ڈالتے ہیں نا، گاڑی ویسے ہی چلتی ہے. آپ نے کبھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہوگا کہ کہیں ڈیزل کی پائپ ہوتی ہے، اور کہیں سپر ہوتا ہے، اور کہیں سپریم ہوتا ہے. ہر گاڑی میں مختلف پیٹرول ڈلتا ہے نا. اچھی قسم کا ڈالیں گے تو گاڑی اچھا چلے گی، خراب پیٹرول ڈالیں گے تو گاڑی کے اندر کچرا آ سکتا ہے. بالکل یہی چیز آپ اس وقت اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کو سبق سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا. ہم انسان کے گاڑیوں کی طرح، ہمارا اندر کتنا سینسٹیو ہے، نازک ہے، باریک وینز ہیں، آرٹریز ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر انتڑیاں ہیں. اگر جسم کی یہ کھال ہے نا، اللہ نہ کرے اگر یہاں کوئی ذرا سے چھلکا اتر جائے تو اندر سے گوشت نظر آ جاتا ہے نا، تو آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو پانی آپ کی اس کچی سکن کے اوپر مرچوں کی طرح لگے گا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہمارا جسم اندر سے اتنا سینسٹیو ہے، تو ہم جب جسم میں کچھ بھی ڈالتے ہیں، پانی ڈالیں، کوک ڈالیں، پیپسی ڈالیں، دودھ ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، ڈائریکٹ جا کے وہ ہمارے جسم کے ایک ایک روئیں پہ اثر انداز ہوتا ہے. مرچیں کھاتے ہیں تو زبان جلتی ہے، پھر اس کے بعد جہاں سے وہ گزرتا جائے اور آخر اسٹمک میں جلن ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں بچپن سے کھا کھا کے عادت ہو گئی ہے تو ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جنہوں نے نہ کھائی ہو، کبھی آپ ان کو کھلا کے دیکھیں، ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح ہر کھانے کا ایک ظاہری اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہر کھانے کا ایک چھپا ہوا اثر بھی ہوتا ہے، باطنی اثر بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر ٹو ڈفرنٹ افیکٹس آف فوڈ اپیرنٹلی. جو ہمیں دکھتا ہے، فیٹی فوڈ کھائیں گے تو فیٹ ہو جائیں گے، فریش فوڈ کھائیں گے تو فریش رہیں گے، سبزی فروٹ زیادہ کھا لیں گے تو بھاگتے دوڑتے رہیں گے. پائے اور جب آپ نان کھا لیتے ہیں تو اس دن پھر کام ہوتا ہے بھاگ بھاگ کے، کیسے جوڑوں میں بیٹھتی ہے. بریانی کی پلیٹ بھر کے کھائیں اور ساتھ اوپر سے لسی پی لیں اور ساتھ دہی کھا لیں اور اوپر سے کچھ اللہ رحم کرے چاولوں کی کھیر بھی کھا لیں جو ساری رات پکتی رہی ہے، فرق پڑتا ہے نا. تو کھانے کا ایک ظاہری اثر ہوتا ہے، اسی طرح ایک باطنی اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم امن میں آ گئے ہو، تمہارا نام اب اللہ نے ایمان والا رکھ دیا ہے، تو اب کرو کیا، کلوا من طیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ. ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا. طیبات کا لفظ دیکھیے، طیبۃن، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. ذرا صرف پاکیزہ کو دیکھیں، پیچھے ہم نے کیا لفظ پڑھا تھا، حلالا طیبا، وہاں اشارتاً بات ہوئی تھی، آج ڈیٹیل سے ہو رہی ہے. حلال اور طیب دو ٹرمز تھی، یہاں کیا ہے، طیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ. اب اس میں پاکیزہ میں کیا ہو گیا، نمبر ایک، وہ کھانا جو تم کھا رہے ہو اپنی صورت سے ہی طیب ہو، فریش ہو، بھون بھون کے، بھون بھون کے اس کے جراثیم نہ مار دو. ہم کیا کرتے، کہتے جب کھانے کو بھونے نا، اس کا رنگ نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں آتا، بسانت نہیں جاتی، آپ دیکھیں اس کے اندر جراثیم کتنے رہ گئے. پہلے تو ہم اتنے موٹے موٹے چھلکے اتارتے ہیں آلووں کے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ کوئی بھی پھل سبزی جو ہے نا، چھلکے کے بالکل قریب والی جگہ پہ اس کے میکسیمم وٹامنز ہوتے ہیں. آلو سبزی جیسے بینگن، شلجم، جس کی بھی چھلکا اترتا ہے نا، سیب، آپ اس کا چھلکا باریک اتارا کریں. اگر آپ نے اس کا موٹا چھلکا اتار دیا نا، وہ طیب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیے کہ طیبات کے اندر کیا، کہ دھو کے کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ، اصل چیز ہو، گلا سڑا نہ ہو، خراب نہ ہو. ٹھیک ہے، سائز چھوٹا بڑا ہو نو پرابلم، لیکن گلا ہوا نہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ طیبات کھانے کے لیے بات کی گئی، تو کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت صاف ستھری لگتی ہیں، لیکن وہ کون سی ہوتی ہیں، طیب نہیں ہوتی. پان چھالیا کیا ہے، زبان جلتی ہے، کٹ لگ جاتے ہیں لوگوں کے زبان پہ. پھر آپ دیکھیے کہ بعض کلچر تو ایسے ہیں، کھانے کے بعد جب تک وہ چھالیا کھا نہ لیں، ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، عادت ہو گئی ہے. کیا ہے، پتھر، پتھر پہ کیا چڑھا ہوا ہے، میٹھا رنگ، رنگ نہیں بھی چڑھا ہوا، پھیکی بھی ہوگی تو اس کو رنگ کرنے کے لیے سرخ رنگ ڈالا ہوتا ہے. کبھی آپ کچھ دالیں دھو کے دیکھیں، जब हम यहाँ बस में जब आते हैं बड़े खुश होते हैं कि बड़ी अच्छी दालें हैं पाकिस्तान में, तो छोटी मोटी होती हैं। आप खास तौर पे जो ग्रीन दाल, मूंग की दाल होती है, उसको भिगो दें, आप देखेंगे जो उसके ऊपर पानी आएगा ना, वो ग्रीन कलर का होगा। हमारे मुल्कों में अगर आपको प्योर किसी छोटे से स्टोर की दुकान है ना, तो वो बहुत ऐसी फ्रेश ग्रीन दाल नहीं मिलती, वो गदली सी होगी। और जब आप बाहर बड़े स्टोर्स में, इवन अपने मुल्कों में लेते हैं, वो फ्रेश ग्रीन है। होता क्या है, उन्होंने उस पर रंग चढ़ाया। अब आप सोचिए, एक दाल जो ज़मीन से निकली, जिस भी रंग की है, उसको जब आपने उसको सब्ज़ किया, तो कैसी किया होगा? पहले उसके ऊपर कोई गीला रंग चढ़ाया होगा, फिर उसको कहीं किसी ड्रायर्स में सुखाया होगा, ट्रीट हो गई। तो तई बात का एक एंगल समझ लीजिए कि लेस ट्रीटेड चीज़ें खाओ। आज क्या हालात हैं, ट्रीटेड कैसे ट्रीट करते हैं। एक ब्रांड का नाम नहीं लेती, बड़ा मारूफ है, यहाँ भी मैंने देखा है, अमेरिका में तो पीते ज़्यादा वो लोग हैं। ऑरेंज जूस है ना, डिब्बा जूस है, उसके ऊपर एक बड़ा सा ऑरेंज बना हुआ है और साथ उसके एक सुरिंज बनाई हुई है, और उसमें डाल के लिखा होता है वाइटामिन डी एडेड। तो मैं वो ऑरेंज को नहीं देखती थी, मैं देखती थी सुरिंज को। हाय हाय, ये सुरिंज डाली थी इन्होंने इसमें, क्या जो उन्होंने उसमें डाला हुआ है। दूध देख ले, वाइटामिन डी एडेड। किसी में आप देखते हैं ये स्किम मिल्क, ये फुल मिल्क, ये हाफ मिल्क, ये होल मिल्क, ये फलाना मिल्क, ये सब के मुकाबले में भैंस के थनों से निकलता हुआ फ्रेश दूध भी है, अगर आपको अवेलेबल है। यहाँ तो वैसे ही आप देखिए कितनी वैरायटी है ना, बल्कि इधर अगर फ्रेश मिल्क मिलता है तो बताएं कि वो कहाँ मिलता है। अपनी एक बहुत करीब की साथी से सुनी, उसके बाद तो दिल ही नहीं करता कि बंदा होल मिल्क पिए। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे बच्चे कितनी जल्दी मोटे हो जाते हैं खाते पीते हैं, क्योंकि फूड बहुत एनरिच्ड है। एक ऑरेंज है, नेचर ने उसमें एक खास हद तक विटामिन डाल दिया है, उसमें विटामिन सी भी है, उसमें फलां भी है, ठीक है, फाइबर भी है। हम क्या करते हैं, फाइबर सारा फेंक के सिर्फ जूस पीते हैं। आप एक ग्लास ऑरेंज जूस देखें, कम से कम 7-8 ऑरेंजेस से निकलता है, फाइबर मोस्टली लोग फेंक देते हैं। अब हुआ क्या कि आपने एक किस्म कैसे, जैसे कैल्शियम की 10-12 गोलियां इकट्ठी खा ली हैं, तो वो जिस्म के अंदर जाके कुछ हलचल मचाएगा ना। बात आपको बताने लगी थी दूध की, तो उन्होंने बताया कि दूध जो आमतौर पे आज जहाँ भी हमारे अपने मुल्कों में इवन लोग वही पीने लग गए हैं, हलीब और फलां, जो पेस्चराइज मिल्क होता है, फितरत ने क्या निज़ाम रखा है कि अगर भैंस का दूध एक ग्लास है ना, तो इसके अंदर फैट होती है, लेकिन फैट के जो मॉलिक्यूल्स है ना, फितरतन उसके अंदर इस तरह से होता है कि जब हम उस दूध को पीते हैं ना, तो उसके ओनली 5% जो फैट मॉलिक्यूल है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, जिससे हमें बॉडी को नेचुरल सोर्स मिलता है, हीटिंग का गर्म होती है सब है। और जो 95% फैट होती है ना फ्रेश दूध की, वो हमारे जिस्म से एक्सक्रीशंस में मदद देती है। कभी आपने फील किया होगा कि जो ही आप दूध पीते हैं ना, तो एकदम उसके बाद वॉशरूम में जाने की जरूरत पड़ती है, पेट में बल सा उठता है, वो जो हमारे पेट में फासत मादे और कब्ज होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, आप गर्म दूध दे, एकदम पेट साफ हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स का काम ही ये है कि उन्होंने जिस्म से जल्दी जल्दी गंदगी को निकाल के वो मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं फुसले में। ये तो है नेचर का निज़ाम। अब होता क्या है कि जब आप इस एक ग्लास दूध को बड़े बड़े मशीनों में डाल के उबालते हैं, पेस्चराइजेशन आपने सुनी होगी, दूध को इतने हाई टेम्परेचर पे उसके ऊपर पकाते हैं, गर्म करते हैं, कि वो सब मॉलिक्यूल जो है ना, वो टूट जाते हैं, और वो टूट के आपके उस दूध में मिल जाते हैं। जब दूध में मिले, तो जिस नेचुरल ग्लास के अंदर 5% फैट थी, वो 100% हो गई। अब हुआ क्या कि जब वो दूध के अंदर मिक्स हो गई, तो जिसने एक ग्लास दूध पीना, उसने 100% साथ फैट भी पी ली, तो मोटे हो गए। आप गांव देहातों में फ्रेश मिल्क पीने वाला कोई मोटा होता नहीं देखेंगे, हमारे इन मुल्कों में आके, यहाँ आके लोग क्यों मोटे होने लगते हैं? कुछ अरसा ये हुआ, हम बड़े खुश, बड़ा गाढ़ा दूध है, ये अपना दूध ही तो जाए, ये तो पानी डाल देता है, हम इस पे बड़े खुश होते हैं जी, ये कंडेंस मिल्क है, ये फलां मिल्क है, वो फलां मिल्क है। लेकिन हुआ क्या कि अब लोग मोटे होने लगे, फिर बॉडी के अंदर जाके उनकी वो सारे जमा होने लगे, उसके कोलेस्ट्रॉल बना, फिर उन्होंने कहा अब इसका एक और तरीका निकालो, पहले सारा पकाते हैं, वो मिक्स हो गया, फिर उसमें से निकालते हैं, ये कितना है, 5%, ये 10%, ये सेमी स्कीम, ये फलाना स्कीम। यकीन करें कि ये खूबसूरत लेबल्स में लगा हुआ जहर है जो हम अपने पेटों में डालते हैं। मैं आपको बददिल नहीं कर रही, ना मैं सेमबरी के खिलाफ हूँ, और ना आपकी टेस्को के खिलाफ हूँ, ना आपके दूधों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि फितरत पे रहेंगे ना, तो आप खुश रहेंगे। नेचुरल, बच्चा माँ का दूध पीता है, आपने बच्चों को देखा होगा, फीड भी किया होगा, कितना पतला दूध होता है। जूं ही बच्चे की खुराक बढ़ती जाती है, माँ का दूध गाढ़ा होने लग जाता है, और उसके बरक्स माँ कहती है इसको फार्मूला दूध पिलाना है, वो पहले ही दिन कर चाहती है कि जवान हो जाए, वो एक जगह 4 चम्मच डाल देती है, हर वक्त बच्चों के पेट खराब होते हैं। तो बात क्या है कि जितना मुमकिन हो नेचुरल पे रहें। इसका खाने से ताल्लुक, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, यकीन करिए ये फितरत सलीमा है। कल हमने अपनी बहन को देखा ना, इन्होंने सिर्फ एक दर्द सुना तो इनके दिल की दुनिया क्यों बदली, क्योंकि इनकी फितरत सलीम थी। अभी इन्होंने अपनी फितरत, अपनी इंस्टिंक्ट को अभी मुतासर नहीं होने दिया। जब एक बंदा नेचुरल माहौल में होता है ना, वो नेचुरल होता है। जब हम किसी एक अपने ऊपर पर्दे को चढ़ा लेते हैं ना, तो खराबी होती है। सर्दियां पहले भी आती थी, गर्मियां पहले भी आती थी, हमारे मुल्कों में देख लीजिए, बच्चे बाहर ठंड में फिर रहे होते हैं, पजामा भी नहीं पहना होता बेचारों ने, नंगी टांगे हैं। कई गरीबों के बच्चे बाहर गलियों में खेल रहे होते हैं, कूड़े पे खेल रहे होते हैं, उनको नहीं कोई जरासीम चिमटता, ना उनको ठंड लगती है, ना उनको इन्फ्लुएंजा होता है, ना कोई और अजीबो गरीब अंग्रेजी किस्म का नाम होता है उनको। हमारे बच्चे जो हर वक्त थर्मल और टेम्परेचर और ऑपरेटेड और दिस एंड दैट, जरा आप उनको बाहर ले तो उनको हवा लग जाती है। तो इतना लपेट लपूट के ना रखें, हम बहुत सख्त हैं। अपनी डाइट के अंदर जितनी नेचुरल डाइट पैदा करें, कम से कम कुक करें। और हैरत की बात है कि हम मोमिनों को जिनको अल्लाह यहाँ पुकारता है, हमारा तो चूल्हा ही नहीं बंद होता। सच्ची बात है, ये गोरे हमसे इस लिहाज से बेटर हैं, मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ वीकेंड्स पे हॉट डिनर बनता है इन लोगों के, चूल्हे पे पक के जैसे पास्ता या चीज केक या फलां, ये तो बेचारे सिर्फ वीकेंड पे अफोर्ड कर सकते हैं। शाम को आए घर में, ब्रेड निकाली, उस पे चीज लगाया, बटर लगाया, खा गए, खत्म बात है। चाय बना ली, कॉफी बना ली, हम वो चीजें खाने के बाद खाते हैं जो खाने पे वो खाते हैं। हमारा हाल ये है। वो कहते हैं ना कि एक बंदा डॉक्टर पे गया, तो डॉक्टर ने उसको प्लान दिया कि तुमने इतना सैलड ये खाना है। कहता डॉक्टर सर ये बता दें, ये खाने से पहले खाने के खाने के बाद खाना है। तो हमारा हाल तो ये है। तो कुलू मिन तैशी बात, ये एक एंगल है। खराब ना खाएं, बासी ना खाएं, कम खा लें। हम बहुत सारा खाना चाहते हैं, टेस्ट कॉन्शियस है। इशारा करना मकसूद था कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखें, फिर किस तरह खाना है, इस पे पीछे भी बात हुई थी पहले पारे में। यहाँ आगे चलते हैं कि मिन तैयबाती मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुमको दी, ये है अल्लाह से मोहब्बत का अंदाज। कभी इस रिस्क को देख के सोचते हो कि हमने तुमको दिया? कौन सी भैंस, काली भैंस, गोबर में लिपटी हुई, गंदगी में बैठी हुई सफ़ेद दूध दे सकती थी? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सूरत मोमिनून में भी आता है और गालिबन सूरह फुरकान में आता है आगे, या नाहल इन्हीं सूरतों में दो दफ़ा कुरान में दूध का तذکرہ, कि बताओ ये काली भैंस में से सफ़ेद दूध कौन निकालता है? और फिर तुम उस दूध को किसी पीर की न्याज का डाल देते हो। अगर अल्लाह हुक्म दे दे तो एक गाय दूध का एक कतरा ना दे, एक बकरी दूध का कतरा ना दे। तो जब खाते हो तो उसको एहसास जिम्मेदारी से खाओ, जिसने तुमको दिया उसी के दिए को खाकर तुम उसी की नाफरमानी करते हो। इसीलिए फरमा दिया कि पाकीज़ा में से खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ। ये तो एक एंगल है ना खाने का, फिर इसमें वो हलाल तैयब में सोर्स ऑफ इनकम भी हलाल हो, तुम्हारी कमाई चोरी की ना हो, डकैती की ना हो, लूट मार की ना हो, किसी का हक गसब ना करो, किसी और की ज़मीन पे तुम कब्जा ना कर लो, गंदी चीज़ें बेच के रिस्क ना कमाओ। आप देखिए तैयब की बात कर रहे हैं ना, मुझे किसी की बात याद आ गई, सिर्फ इशारतन, यहाँ मौजू शराब नहीं है, वो आगे जाके जहाँ आएगा वहाँ बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला जो सोर्स ऑफ इनकम को भी हलाल कहते हैं ना, उसकी भी वजह समझिए। मिसाल देती हूँ कि शराब है, एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम शराब है, इस्लाम कहता है कि उस इनकम से खाना पीना हराम है, हलाल नहीं। इसको एक साइड पे कर दे, आप कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ब्रेड तो ब्रेड ही होती है, असरात होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस बंदे ने शराब बेची, उसकी माँ उसको दुआ देती है, हर माँ दुआ देती है ना, अल्लाह मेरे बेटे को छप्पर फाड़ के रिस्क दे। अब एक माँ है, उसको पता है उसके बेटे का पब है, शराब खाना है, क्या कहेगी, अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क उसको वसत दे, यानी और शराब बिके। एक शराब की बोतल जो उसके बेटे के हाथों से बिकी, उसके वर्कर ने उसको पैक किया, थैली में डाला, थैली से घर गई, घर से किसी की फ्रिज में गई, वहां से किसी गंदे जहन वाले ने पिया, उस शराब को पी के उसने क्या किया, ये सारा उस बेटे के नाम पे गया। कुलू मिन तैयबाती, सीधी सी बात है, ये तो कोई दुआ भी नहीं दे सकता ऐसे रिश्तेदारों के कि अल्लाह आपको दौलत दे, बरकत दे, क्या दे, खाक दे, कि आपकी वजह से जिना फैले, आपकी वजह से बदकारी फैले। एक हमारे अमेरिका में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, रिजवान साले उनका नाम है, तो उनका मैंने बहुत पहले एक लेक्चर सुना था इसी शराब के मौजू पे, कि मेरे भाई सोचो जो बोतल तुम्हारे हाथ से बिकती है, और अमेरिका में तो अल्लाह माफ करे कि हर 10 में से एक मुसलमान का स्टोर होगा ये वाला कन्वीनियंट स्टोर जिसमें शराब है। अब तो हालात बदल गए होंगे, आई डोंट नो, जब मैं थी तो मैंने ये देखा था। तो वो यही उन्होंने कहा था कि सोचो कि ये बोतल तुम्हारे काउंटर से लेके आखिरी रिजल्ट कहाँ पहुंचता है, तो क्या तुम उस सारे में जिम्मेदार नहीं हो? अब इस्लाम क्या कहता है, ना गंदी चीज़ खाओ ना पियो। सिगरेट पीते हैं आप, क्या सिगरेट तैयब है? उसका धुआं जो अंदर जाता है, एक तस्वीर थी कहीं अगर आपको दिखा सके कि एक वो शख्स है जिसका एक सेहतमंद फेफड़े हैं और एक सिगरेट वाले फेफड़े काले स्याह हो जाते हैं। आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया था उसमें दिखाई थी, जाके वेबसाइट से दोबारा देख ले, काला हो जाता है अंदर से फेफड़े जिसके जो सिगरेट पीता है, हुक्का
ऊपर भी
तम्बाकू,
बना होता है शिगर
उसके ऊपर भी दिल बना होता है, ऊपर लिखा भी होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है, फिर भी पीते हैं। तो इस्लाम चाहता है कि साफ सुथरे रहो। देखिए हमें जो भी रिस्क अल्लाह ने दिया ना, इसलिए दिया है कि हम खाएं और इबादत करें, अल्लाह को माने, अल्लाह से प्यार करें, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। जब खाने का तरीका खराब है, और इसका असर होगा, यकीन नहीं होगा, आज तो वेव्स का असर है। आप कहते हैं माइक्रोवेव ना यूज करें, इसकी वेव्स पड़ती हैं। आप हर चीज के वक्त के साथ साथ असरात देख रहे हैं ना, किस चीज़ से कैंसर पैदा होता है, किस से दूसरा होता है। तो क्या इन सारी चीज़ों का हमारे अखलाक पे असर नहीं होगा? आगे कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकली बात भी सामने आ रही है, कहा कि अच्छा खाओ, साफ खाओ, फ्रेश खाओ, ताकि तुम्हारी इबादत में लज्जत आए, तुम्हें अल्लाह से बात करने में मज़ा आए, तुम्हारी सोच पाकीज़ा हो, और साथ ही साथ वशकुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और उसका शुक्र करो, किसका? अल्लाह का, अगर हो तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हुए। ये है इस्लाम का वो खूबसूरत नज़रिया जो खाने पीने के बैलेंस को शो करता है। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात होते हैं इस बारे में कि क्या इस्लाम अच्छा खाने से रोकता है? सवाल है ना, क्या अच्छे खाने ना खाएं फिर? क्या फिर सूखी रोटियां ही खाएं पानी में डुबो के? तो पहली बात है कि ये मुराद नहीं है, अल्लाह ने बनाया ना रिस्क। आप सोचे कि अगर अल्लाह ये सारी सब्जी गाजर आलू मूली चावल रोटी सालन बनाता और कहता खबरदार हाथ ना लगाओ, खाओगे तो मारूंगा, कभी कोई माँ ऐसी है सुबह से दोपहर तक खाना पका रही है और खाना पकाने के दौरान क्या कह दे, पक्के रखे तो बच्चों से क्या खबरदार अगर तुमने हाथ लगाया? ठीक है, दावत है, मेहमानों के लिए बनाया है, वो बच्चों को चैनलाइज कर सकती है कि अभी ना खाओ, ये ना खाओ, बाद में खाओ। लेकिन आप सब भी औरत होने के नाते इस बात को अच्छी तरह जानती होंगी कि जितना आपको अपने हाथ से किसी को खाना पका के खिला के मजा आता है, बाजार से खरीद के उतना नहीं आता। फितरतन, और मैं सोचती हूँ हमारे इंडो पाक के कल्चर के तो रगों में बसा हुआ है खाना खिलाना पिलाना। ये एक खूबी है मुसलमानों की कि मेहमान नवाजी बहुत है, गैरों को आप देखे वो पास ही अपना सैंडविच खोलेंगे खा लेंगे, किसी को पूछते भी नहीं साथ बैठे को, और हम मुसलमान तोड़ तोड़ के देते हैं आप भी ले लें आप भी ले लें। तो ये खूबसूरती होती है, अच्छी बात है। इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम कहता है कि खाओ, कुलू मिन तैयिबाति वश्कुरू लिल्लाह, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा ओढ़ो, और खूब अच्छे काम करो। यहां आप शुक्र को समझेंगे, हर बंदे के शुक्र का लेवल फर्क होगा। पिछली आयतों के रब्त में ले लीजिए तो मक्का वालों ने कुछ चीजें अपने ऊपर हराम की हुई थी, मतलब कुछ लोग थे वो गोश्त नहीं खाते थे, अब इस्लाम आ गया उनके अंदर। बचपन से बाप दादा के वक्त से उन्होंने गोश्त से रुकते हुए देखा, यानी खुद को वेजिटेरियन कहते थे, उसका शुक्र क्या, वश्कुरू लिल्लाह, के अब खाओ। जब अल्लाह ने कह दिया खाओ तो तुम बाप दादा का नाम लेके कराहत ना करो। जैसे आज की मिसाल देते हैं कि कोई शख्स है जो बचपन से गोश्त नहीं खा रहा, गाय का गोश्त नहीं खाते कुछ लोग, एक मजहब ऐसा है कि उनको अपनी गाय से मोहब्बत है, वो गोश्त नहीं खाते, नहीं खाया था बचपन से, अल्लाह ने इस्लाम दे दिया, दिल खुल गया तो कहा वश्कुरू लिल्लाह, अब खाओ। पहला दर्जा खाने का कि अब खाओ, ये ना कहो कि मुझे कराहत आती है, मुझे घिन आती है, पता नहीं गुनाह ही ना हो जाए, ये तो हमारी गौ है, ये माता है, ये नहीं करो। ये पहला दर्जा है, ये उसका दर्जा है, ठीक है। दूसरा दर्जा क्या होता है कि एक शख्स जो बचपन से खाता था, हम मुसलमान हैं हमने कभी नहीं सोचा कि गोश्त ना खाएं, ये अलग बात है कि नहीं खाए कोई गोश्त ना खाए, चिकन ना खाए, ये ना खाए, पसंद है क्या, वो अलग बात है, खाता था लेकिन खा के कभी सोचा ही नहीं कि किसने दिया, इसको खा के करना क्या। इधर वलीमे की दावत पूरी हुई, बड़ी बड़ी तोंदे भरी और फिर महफिल मौसीकी सज गई, ये ना करो। जिस दिन खूब अच्छा खाते हो उस दिन काम खूब बुरे ना करो। क्या आज हमारा ये मिजाज नहीं बन गया? रोज दाल सब्जी आलू सालन कुछ भी खा ले, वैसे तो सच्ची बता रही हूँ कि हम तो रोज ही अच्छा खाते हैं, हमें तब ये पता ही नहीं है कि अच्छा खाना क्या होता है, क्योंकि रोज अच्छा मिलता है। पहले एक दौर होता था किसी के घर दावत पे जाना हो, बचपन की बातें अपने जाहिर है कि क्लास शोर में आपके भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, शौक क्या होता था, एक तो शौक बचपन में हर जगह जाने का शौक, और दूसरा क्या होता था कि पुलाव होगा वहाँ, अक्सर पुलाव और आलू गोश्त चिकन का शोरबा, हमारे ट्रेडिशन है ना, खुशी होती थी कि आज पुलाव होगा, मुर्गी पकेगी, घर में मेहमान आता था बच्चे सबसे ज्यादा खुश इसलिए होते थे कि आज मुर्गी पकेगी, वो तो बेचारा एक दो बोटी खाएगा बाकी हम नहीं खानी है, मियाँ सब भी बड़े खुश होते थे। कि आज मेहमानों के तुफैल हमें भी मुर्गी मिल जाएगी। आज क्या हाल है लिखिए जरा। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ खाने पीने के, मुझे बहुत खुशी होती है आपको भी देखकर। हम भी सब खाते हैं, ये भी नहीं कि मैं नहीं खाती, हम सब खाते हैं, लेकिन सिर्फ मेरा काम है सोच बेदार करना। आज जाकर अपनी किचन, फ्रिज और फ्रीजर, पेंट्री, उसमें से आप कितनी किस्म की चिकन या गोश्त आपके घर में, उसकी लिस्ट बना के लाए। मेरे घर में मीट किस किस शक्ल में मौजूद है, वो टिन में भी आपको मिल जाएगा, वो टर्की सैंडविचेस की सूरत में भी मिल जाएगा, वो हॉट डॉग्स की सूरत में मिल जाएगा, वो नगेट्स की सूरत में मिल जाएगा, वो आपको कबाब, पैटिस, और आपको बोनलेस और बोन और पूरी मुर्गी के टुकड़े कर कर के हम अलग से अलग लाते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्रेश चिकन भी मिल जाएगी आपको, उसके अंदर क्या कहानियाँ मिल जाएंगी। क्या हमारे बच्चे इतने शुक्रगुजार हैं हमारे, सच बताएं। हम जितना बच्चों के नाम तो मैं एक इस्तेआरा तो नहीं लेती हूँ ना, हमारा अपना नफ्स भी तो बच्चा ही है। जितना अच्छा खाते हैं कि वश्कुरू लिल्लाह है, एहसास ही खत्म हो गया। आप बच्चे क्यों नहीं दावतों में जाते कभी, आपने नोट किया? अक्सर घरों में झगड़ा पड़ जाता है जिस दिन फैमिली की दावत हो। बेटी कहती है मैंने नहीं जाना, बेटे कहते हैं मैंने नहीं जाना, मियाँ साहब कहते हैं मैं पार्टी में, अखीर फिर रोज हो के मियाँ बीवी जा रहे होते हैं, बच्चों को ले भी जाएं तो उनके मूड बने होते हैं, फिर भी उनको वापसी में मैकडोनल्ड ही खिलाना होता है। क्यों भला? इसलिए कि मिन्नतें करके तेरी तुझे बिगाड़ दिया। एक हफ्ते का फाका दे के देखें, नफ सब ठीक हो जाएगा। आप आजमा के देखें, सिर्फ एक हफ्ता कहें कि मैंने नेचुरल फूड खाना है। ये नहीं कि मुर्गी अल्लाह ने नहीं पैदा की, गोश्त अल्लाह ने नहीं किया, खाओ सब बैलेंस के साथ खाओ। एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन गोश्त, चौथे दिन कुछ भी नहीं, सब बचा खुचा खाओ। यकीन करें अगर आप हफ्ते का सिर्फ एक दिन इस काम पे रख लें, वैसे तो आपके घरों में बचना ही नहीं चाहिए, जितना पकाते हैं उतना खत्म हो जाए। सबसे मुश्किल काम है जब खाना इतना सा बच जाए उसको संभालना का है, अदरवाइज खाना नहीं बचता। मेरे घर में तो नहीं बचता अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मैंने देखा है चार चीज़ें आ जाएं बाहर से, लेकिन मेरे हस्बैंड सबसे पहले वही खाते हैं जो मैंने घर में बनाया होता है, ख़त्म हो जाता है। फिर खुशी होती है। हमने पढ़ा था कि सुम युमी तुकुम युही कुम सुम युमी तुम सुम लही, तो जो हम गोश्त के साथ ये करते हैं, पहले गर्म फिर ठंडा फिर फ्रीज करते हैं फिर पकाते हैं फिर फ्रीजर में डालते हैं फिर डिफ्रॉस्ट करते हैं, उसकी तो कितनी मौतें कितनी जिंदगियां हो गई। तो नेचुरल, बी नेचुरल। मसाले इतने, मिर्चें इतनी कि मत मार देते हम गोश्त की, अगर मुर्गी जिंदा हो तो वो परेशान हो। वैसे मैं नमक ज़्यादा डालती हूँ, अब तो मैं काफ़ी कम हो गई हूँ, मेरा हाथ ही नहीं रुकता था। पाकिस्तान के नमक और अमेरिका के नमक में बड़ा फ़र्क है, तो जिस हिसाब से पाकिस्तान में डालते हैं तो अमेरिका में भी मैं जाके उसी सोच से डालती थी, वो खालस होता था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम इतना नमक डालती हो कि अगर मछली जिंदा हो तो मर जाए इस नमक के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी हवत कम कर दिया, नहीं डालती। लेकिन ये सच है कि हम दूसरी चीज़ें इतनी डाल देते हैं कि असल टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। मिर्चें कितनी डालते हैं हम कि असल खाने का टेस्ट ख़त्म होता है, बस मिर्चे मिर्चे कहते मज़ा आ रहा है ना, पता ही नहीं चला मुर्गी थी कि हलीम किस चीज़ की थी, दाल थी क्या थी, मिर्चे मिर्चे थी। तो आप सोचे, मुझे अपनी साइंस की टीचर की बात याद आ रही है, ये बात कहते हुए कहती थी कि सोचो जब तुम मिर्चें खाते हो तो तुम्हारे होंठ और जुबान जलती है ना, हालांकि ये फिर भी निस्बतन सख्त अजाएं, तो सोचो कि एसोफेगस और आपके स्टमक की लेयर जो इतनी नाजुक है उस पर वो मिर्चें क्या करती होंगी। ठीक है, तो खाइए, हद में रह के खाइए और शुक्र करें। बंदा मोमिन का खा के शुक्र करना क्या है कि जितना अच्छा खाए उतना अच्छा उसी नेकी का काम करे। फिर ये नहीं हो सकता कि हम दावतों और शादियों के बाद नाफरमानी के काम करें, फिर तो उस दिन हमारी अकड़ ही ना ख़त्म हो। और आज मामला बिल्कुल उलट है, जितने अच्छे खाते हैं उतना ही ज़्यादा घूरते हैं, उतना ही अल्लाह की नाफरमानी मानते हैं। तो हर बंदे का शुक्र फ़र्क होगा, नहीं खाते थे तो खाना शुरू कर दो, कराहत आती थी तो कराहत ख़त्म कर दो, और उसके बाद देने वाले का शुक्र अदा करो।